أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا مولانا ابوالقاسم المصطفیٰ محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لؤمة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صلوات بر محمد وآل محمد. یوم یعصوب الدین کے اس مبارک اور بابرکت تقریب میں مجھے یعصوب الدین امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں جاذبہ اور دافعہ کے عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے. دنیا کے اندر الہی رہبر اس مقناطیس کی طرح ہوتے ہیں جس کے اندر بہت بڑی قوت ہوتی ہے لوہے کے ذرات کو اپنی طرف کھینچنے کی. جس طرح زمین کے اندر کشش ثقل ہے اور وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، آپ یہاں کوئی چیز پھینکیں تو وہ زمین کی طرف جائے گی اور زمین میں یہ کشش موجود ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو اوپر کی طرف جانے نہیں دیتی، اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اس طرح کائنات کے اندر کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر اس طرح کی کشش پائی جاتی ہے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت میں اعلیٰ درجے کی کشش موجود ہے. 1400 سال کے اس طویل عرصے میں ہر دور میں ایسے ایک دو نہیں، سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں انسان رہے ہیں جن کو عشق علی علیہ السلام کی کشش نے اپنی طرف کھینچا ہے. جو عشق علی کی اس تمنا میں، استاد محترم کی اس مثال کے مطابق جو ابھی بیان فرما رہے تھے استاد اخلاق امن صاحب، کہ جو پروانے بن کر نور کے عشق میں آگے بڑھتے رہے اور اس بات سے بے خوف ہو کر کہ یہ آگ تو مجھے جلا کے راکھ بنا دے گی، پروانے کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آگ اس کا کیا انجام کرے گی، کیا حشر ہوگا اس کا، اس لیے کہ وہ نور کا عاشق ہے، وہ روشنی کا عاشق ہے، وہ موت کے انجام سے بے خوف ہو کر وہ اپنے آپ کو راکھ بنانے کے لیے آتا ہے، نور کی طرف آگے بڑھتا ہے. اور علی ابن ابی طالب کی شخصیت اس طرح کی ایک شخصیت ہے. جو میسم تمار کو تخت دار تک لے جاتی ہے بے خوف ہو کر۔ میسم تمار دنیا کے اس جابر اور ظالم کے دور میں تخت دار پہ چلا گیا اور عشق علی کا اعلان کرتا رہا۔ اسے پتا تھا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ انجام سے بے خوف ہو کر وہ تخت دار پہ چلا گیا۔ لہذا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے جاذبے اور دعوے دونوں پہ میں نے کچھ گفتگو کرنی ہے اس مختصر وقت میں۔ دین اسلام کا جہاں تک تعلق ہے، آئمہ ہدا نے جو دین کی تعبیر کی ہے ایک لفظ میں، حل الدین و الا الحب، کیا دین عشق خدا اور عشق اہل اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ نہیں، کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ دین نام ہے عشق کا، دین نام ہے محبت کا، دین نام ہے خدا سے عشق کا، خدا سے محبت کا۔ اس لیے قرآن کریم نے متعدد آیتوں میں اہل ایمان کی، اہل دین کی یہ صفت بیان کی کہ ان کے اندر یہ بارز اور واضح صفت موجود ہے، وہ خدا سے عشق کرتے ہیں، وہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ انہیں خدا سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ جو اپنی اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہوتی ہے، جو اپنے بھائی کی محبت سے بڑھ کر ہوتی ہے، جو اپنے عزیز ترین انسان کی محبت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ کائنات میں انسان جن جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، اگر آپ ان کی عشق خدا کی منزل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دنیا میں کسی چیز سے وہ ایسی محبت نہیں کرتا جیسی اسے خدا سے محبت ہوتی ہے، اور جیسی خدا سے محبت ہوتی ہے ایسے ہی اس کے دل میں محبت عشق ہوتا ہے ولی خدا کے ساتھ۔ قرآن کریم نے متعدد آیات کریمہ میں بیان کیا کہ اہل ایمان خدا سے محبت کرتے ہیں، عشق خدا میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ سورۃ مائدہ، فَسَوْفَ یَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، یہ آیت کریمہ جسے میں نے ابتدا میں تلاوت کیا، اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا مَن یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَن دِینِہِ، تم میں سے جو کوئی دین کو چھوڑ دے گا، دین سے مرتد ہو جائے گا، بے دین ہو جائے گا، وہ خدا کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس لیے کہ خدا تمہارا محتاج نہیں ہے۔ فَسَوْفَ یَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تم خدا کو کوئی نقصان نہیں دے سکو گے، اس لیے کہ خدا تمہاری جگہ پر جو جھوٹے دعوے دار ہو ایمان کے ایک اور قوم کو لے کر آئے گا، تمہارے بدلے ایک اور ایسے گروہ کو لائے گا جو واقعاً خدا کے عاشق ہوں گے، جو خدا سے محبت کرتے ہوں گے اور خدا ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ دو طرفہ محبت ہے، جو خدا سے محبت کرتے ہیں خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ جن کی زندگی عشق خدا میں بسر ہوتی ہے وہ خدا کے عاشق بھی ہوتے ہیں اور معشوق بھی ہوتے ہیں، وہ خدا کے محب بھی ہوتے ہیں اور محبوب بھی ہوتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی وہ آیت کریمہ جو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے رسول بتا دیجئے ان اہل ایمان سے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں خدا سے محبت ہے، تو اس دعوے کے لیے دلیل بھی چاہیے۔ فقط دعویٰ کافی نہیں ہے، دلیل لے کر آؤ اپنی دعویٰ کے لیے۔ پروردگارہ کیا دلیل لائیں، ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، کیا دلیل چاہیے؟ فرمایا ان سے کہہ دو کہ اگر دعوے محبت میں سچے ہو تو رسول کی اتباع کرو، رسول کے پیروکار بن جاؤ۔ فقط نعرے لگانے سے محبت نہیں ہوتی، تمہارا کردار بتائے گا कि तुम सच्चे आशिक हो या झूठे दावेदार हो। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो मुस्तफा की इताअत करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। कुरान करीम ने सूरत हशर में खुदा से इश्क और मोहब्बत का एक और दर्स दिया हमें। इसीलिए तो रवायत ने कहा, हलिद्दीन इल्लल हुब, क्या इश्क खुदा और औलियाए खुदा के अलावा दीन किसी और चीज का नाम है? किसी और चीज का नाम नहीं है दीन। फरमाया, वल्लजीन तबवउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजदून फी सुदूरहिम हाजतन मिम्मा उतू वयुसिरून अला अन्फुसहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ये खुदा के इश्क में अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपनी दौलत खुदा की राह में लुटा देते हैं। ये अंसार, ये मदीने के रहने वाले, ये रसूलुल्लाह के साथी इस अजमत किरदार के मालिक हैं कि खुदा के इश्क में, रसूल खुदा के इश्क में अपनी दौलत निछावर कर देते हैं। आपने देखा, जब मुहाजिर हिजरत करके मक्के से आए मदीने में, तो ये अंसार रसूलुल्लाह थे, ये मदीने के रहने वाले थे जिन्होंने अपनी दौलत दे दी। फरमाया कि ये दौलत खुदा की राह में देते हैं और इनको कोई गम भी नहीं होता, कोई दुख भी नहीं होता, कोई परेशानी भी नहीं होती, इसलिए कि इश्क खुदा दौलत की मोहब्बत से गालिब है इनकी नजर में। एक रवायत है हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, रावी कहता है कि इमाम आली मकाम की बारगाह में इमाम का एक सहाबी आया, खुरासान से, ईरान से सफर करके, मशहद मुकद्दस के इलाके से बहुत दूर से सफर करके आया। वो इमाम की जियारत के लिए जब आया वहां से, तो पैदल चल के आया, किसी सवारी पे नहीं आया, बड़ा तवील सफर था उसका। ये इश्क का सफर और पैदल सफर करके मदीना तैयबा पहुंचा। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, बारगाह इमामत में। जब इमाम के हुजूर में पहुंचा तो उसके पांव दुख रहे थे, पांव से खून जारी था, पांव में छाले पड़ चुके थे, पांव में निशानात बन चुके थे, पूरे के पूरे पांव जख्मी हो चुके थे। जब उसने जूते उतारे तो जख्म के निशान, छालों के निशान नजर आ रहे थे। अज की फर्जंदे रसूल, मैं आपके इश्क में, मैं आपकी मोहब्बत में बहुत दूर से पैदल सफर करके यहां आया हूं, खुरासान से मदीने तक का सफर पैदल चल के आया हूं आपके इश्क में। सवारियां मौजूद थीं लेकिन सवारी पे नहीं आया, ऊंट मौजूद थे लेकिन ऊंट पे सवार होके नहीं आया, घोड़े मौजूद थे लेकिन घोड़ों पे सवार होके नहीं आया, मैं पैदल चल के आया हूं यह सुनना था। मेरे इमाम ने फरमाया, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मोमिन, तू तो इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, हम आले मोहम्मद की मोहब्बत, हम आले मोहम्मद का इश्क वो खजाना है, वो अजमत है कि अगर पत्थर भी हमारे साथ मोहब्बत करेगा, आले मोहम्मद से मोहब्बत करेगा, तो वो पत्थर भी रोज़े कयामत हमारे साथ मशहूर होगा। उसके बाद ये जुमला फरमाया, सफीनतुल बिहार का जुमला, हलिद्दीनो इल्लल हुब, क्या दीन इश्क खुदा के अलावा किसी चीज का नाम है? क्या दीन इश्क औलियाए खुदा के अलावा किसी चीज का नाम है। लिहाजा अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत में जाज़िबा इंतहा दर्जे का है। तमाम अंबिया और आइम्मा हुदा उनकी शख्सियत इसी तरह से है। आप एक रवायत हमेशा सुनते हैं उलमा से, और उलमाए किराम कहते हैं कि यह रवायत इसका मफाद यूं महसूस होता है कि एक शख्सियत जो इस सदी की अजीम शख्सियत है उनके किरदार पे दलालत करती है। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रजुलुम मिन अहले कुम, एक मर्द उठेगा कुम के शहर से, वो एक ऐसी शख्सियत का मालिक होगा, वो एक ऐसे अजमत किरदार का मालिक होगा कि लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से उसको मिकनाती समझकर जमा हो जाएंगे, जर्रे जर्रे उसके गिर्द जमा होना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे लोहे के जर्रात के दरमियान आप एक मिकनातीस रख दें, एक चकमक आप रख दें, जितने भी लोहे के जर्रात होंगे मिकनातीस की कशिश उनको जमा करेगी। कहा कि इस तरह से लोग कुम के इस अजीम रहबर के गिर्द जमा होना शुरू हो जाएंगे, और वो इस तरह से लोग उसके गिर्द जमा होंगे, बेखौफ होकर आगे बढ़ेंगे। अजमत किरदार की हद यह होगी कि इसके साथ ही भी बेखौफ होंगे और यह खुद भी बेखौफ होगा। इस सदी में आपने देखा कि यह कुम से उठने वाला खुमैनी कबीर था कि जो इस दौर में इस तरह से आगे बढ़ा, पूरी दुनिया के अतराफ और अकनाफ से लोग इस तरह से इसके गिर्द जमा होते चले गए जैसे लोहे के जरे मिकनातीस के गिर्द जमा हो जाते हैं। कोई मोहम्मद अली नकवी लाहौर से चला, कोई आरिफ हुसैन अल हुसैनी पिशावर से चला, कोई हसन नसरुल्लाह लुबनान से चला, और खुमैनी के गिर्द इन्होंने हल्का बांधा, खुमैनी एक मिकनातीस बन गया और ये लोहे के जरा जमा होना शुरू हो गए, जिन्होंने नफकत ईरान को बल्कि पूरी दुनिया कुफर को लर्जा के रख दिया और कुफर के ऐवानों के अंदर सिलसिला बपा कर दिया। यह ऐसी मिकनातीसी शख्सियत इमाम खुमैनी की थी इस दौर में। ऐसी मिकनातीसी शख्सियत 1400 साल के इस तवील अरसे में अली इब्न अबी तालिब की रही है। दोस्तों, लेकिन यह बात जहन में रहे कि जो मिकनातीस होता है वो लोहे के जर्रों को खींचता है, वो मट्टी को नहीं खींचता, वो पत्थर को नहीं खींचता। आप यहां मिकनातीस रख दें, लोहे के जर्रे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही दौड़ता चला जाएगा मिकनातीस की तरफ। जहां मिकनातीस रखेंगे लोहा दौड़ता हुआ उस तरफ चला जाएगा, लेकिन मट्टी का ढेला नहीं जाएगा, पत्थर का ढेला नहीं जाएगा। यही सबब है कि अली इब्ने अबी तालिब की शख्सियत के गिर्द जो लोग जमा हुए वो वही लोग थे कि जो कशिश महसूस कर रहे थे। कोई बिलाल की सूरत में आया, कोई मालिक अश्तर की सूरत में आया, कोई मैसम तमार की सूरत में आया, पूरी दुनिया से लोग जमा हो गए और मिकनातीस ने उन सबको जमा कर लिया जिनके अंदर सलाहियत थी। अली की शख्सियत ऐसी जाजिब शख्सियत है। बड़ा दिलचस्प वाकया लिखा है उलमा ने, ये अली की शख्सियत सदियों पर मुहित है। इश्क अली बनू अब्बास जो एक तवील अरसे तक मुसलमानों के हाकिम रहे, बनू अब्बास का एक हाकिम गुजरा है जिसका नाम मुतवक्किल है। उलमा ने मुअर्रिखीन ने एक जुमले में मुतवक्किल का किरदार बयान किया, कहा कि मुतवक्किल को समझने के लिए यह जुमला काफी है कि मुतवक्किल बनू अब्बास का यजीद है, वो बनू उमैया का यजीद, ये बनू अब्बास का यजीद। मुतवक्किल, ये मुतवक्किल इसके दौर में एक बहुत बड़े अदीब, एक बहुत बड़े आलिम, एक बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं जिनके इल्म और फजल का शोहरा था। बहुत बड़े अदीब थे जनाब इब्ने सकीत रिजवानुल्लाह अलैह। इसने उसको, उसके इल्म को देखकर, उसके अदबियात को देखकर अपने दो बेटों का उसको उस्ताद बना दिया। उसे कहा कि आप मेरे महल में आए और मेरे बेटों को तालीम दें। ये रोजाना आते थे मुतवक्किल लानतुल्लाह अलैह के दो बेटों को पढ़ाने के लिए। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, उनके बेटों का कोई इम्तिहान था, उनको कोई इनाम देना था। मुतवक्किल आ गए, ये उस्ताद भी बैठा हुआ था, उसके दोनों बेटे भी बैठे हुए थे। अब मुतवक्किल को शायद शायद कहीं से कोई पता चला कि ये जो आपने उस्ताद रखा है ये तो अली का शिया है, कैसे तुमने अपने बच्चों का उसे उस्ताद बना दिया। उसने इम्तिहान लेना चाहा, देखकर कहने लगे कि उस्ताद मोहतरम जरा इतना बता दीजिए कि आपकी नजर में ये मेरे दोनों बेटे अफजल हैं या अली के दो बेटे हसन और हुसैन अफजल हैं। अजीब सवाल है, जो किरदार उसका, वही जहनियत उसकी, वो दुश्मन आले मोहम्मद, वो बनू अब्बास का यजीद पूछने लगा कि ये बता दीजिए कि मेरे ये दो बेटे, दो शहजादे, ये अफजल हैं या अली के बेटे हसन और हुसैन अफजल थे। अब ये अली का आशिक इस मंजिले इश्क पे था, बेखौफ होकर बरजस्ता इसने जवाब दिया, कहा अली कहां और तू कहां, अली के बेटे कहां और तेरे बेटे कहां, कहां अली जैसा अजीम इंसान और कहां तुझ जैसा बदकार इंसान। रब्बे काबा के इज्जत की कसम है, अगर हकीकत जानना चाहते हो तो अली का गुलाम कंबर तेरे बेटों से और तुझसे अफजल है। करता है, ये इश्क अली जिसने आशिकान अली को बेखौफ बना दिया, इश्क रसूल के जिसने आशिकान रसूल को बेखौफ बना दिया। कोई तमन्ना नहीं है, अभी किबला बता रहे थे अबू जर गफारी, सख्त गर्मी है, कहा पानी नहीं पीऊंगा, प्यास नहीं लगी, कहा शदीद प्यास है, इतनी शिद्दत की प्यास है आप तस्वुर नहीं कर सकते, कहा प्यास भी लगी है, पानी भी ठंडा है, पानी भी पीते क्यों नहीं, कहा मोहम्मद के बगैर पानी जहर लगता है, मोहम्मद के बगैर पानी अच्छा नहीं लगता, ये इश्क मुस्तफा है जिसने अबू जर को अबू जर बना दिया, ये इश्क अली है जिसने मैसम को मैसम तम्मार बना दिया। यहां पे जो हुकमा हैं, जो बुजुर्गान हैं, एक जुमला कहते हैं कि इश्क अक्सीर है, इश्क अक्सीर है, और अक्सीर उस धात को कहते हैं, इल्म कीमिया के उस धात को कहा जाता है जिसके अंदर यह खासियत है कि अगर वो किसी चीज से टच हो जाए तो उसे सोना बना देती है, अगर पत्थर से टच हो जाए तो पत्थर सोना बन जाता है, अगर लोहे से मस हो जाए तो लोहा सोना बन जाता है, अगर मट्टी से लग जाए तो मट्टी सोना बन जाती है। ये अली का इश्क अक्सीर है, ये मुस्तफा की मोहब्बत अक्सीर है, ये करबला का इश्क अक्सीर है, जो हबीब इब्ने मजाहिर को सोना बना रही है, जो होर जैसे तागी को यजीद के साथी को निकालकर इंसानियत का रहबर बना रही है, इसको कहते हैं अक्सीर। ये इश्क अली, ये औलिया का इश्क, ये इंसान को बदलता है। हम दीनदार नहीं बन सकते जब तक हमारे दिल में इश्क न हो, खुदा से इश्क, औलियाए खुदा से इश्क। इसलिए कि कुर्बानी इंसान तब देता है, सब कुछ लुटाना तब जानता है जब उसके अंदर इश्क हो। तभी तो रसूलुल्लाह ने नसीहत की, वसीयत की, फरमाया ज़ूबू फी अलीन कमा ज़ाबा हुआ फिल इस्लाम। अली के अंदर गर्क हो जाओ, अली के अंदर अपने आप को फना कर दो, जैसे अली ने अपने आप को इस्लाम में फना कर दिया है। ये हुक्म था रसूलुल्लाह का। ज़ूब किसे कहते हैं? आप उसकी सबसे आसान मिसाल और तशबी लोहे से दे सकते हैं। आपने देखा होगा लोहे की भट्टी पे चले जाएं आप, लोहे का रंग काला होता है और बड़ा सख्त होता है, बहुत सख्त। आप उसको उठाते हैं लोहे को, काले रंग के उस सख्त लोहे को उठा के आप आग की भट्टी में डाल देते हैं, फिर आग को आप जलाना शुरू कर देते हैं, उसकी शिद्दत में और इजाफा करते हैं। आप लोहार को देखते हैं आप बाजारों के अंदर, वो मजीद उसके अंदर शिद्दत पैदा करता है। ये काले रंग का लोहा आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग बदल देता है और आग के रंग में रंगना शुरू हो जाता है। ये थोड़ी देर पहले काला था, अब ये काला नहीं रहा, अब ये गोरा हो गया, अब ये लाल हो गया, अब ये पीला हो गया, बिल्कुल इसका रंग आग जैसा हो गया। अब ये लोहा सख्त नहीं रहा, इसकी सख्ती भी खत्म हो गई, अब ये पानी की तरह बहना शुरू हो जाता है, इसके अंदर लचक आ जाती है। इश्क इंसान से यही काम करता है। जिस जिस के अंदर इश्क अली था, जिस जिस के अंदर इश्क रसूल था, उसने अपने रंग को बदलाया। अगरचे कल तक काला था, आज उसका रंग मजीद सुर्ख हो गया, पाकीजा हो गया, नूरानी हो गया। जैसा अली का रंग है, ऐसा ही रंग मातम समय तम्मार का। जैसा रंग अली का था, ऐसा रंग मालिक एस्तर ने अपना लिया। जैसा रंग रसूल का था, ऐसा ही रंग अबू ज़र ने अपना लिया। जैसा रंग रसूल का था, ऐसा ही रंग सलमान ने अपना लिया। तभी तो रसूल ने कहा अस्सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हमसे जुदा नहीं है, सलमान हम में से है। ये है जाज़बा अली इब्ने अबी तालिब का। और इस दौर के अजीम फिलासफर, अजीम इनकलाबी रहनुमा आयतुल्ला शहीद मोहम्मद बाकर सदर ने कहा ज़ूबू फिल इमाम खुमैनी कमा ज़ाबा हुआ फिल इस्लाम। खुमैनी की शख्सियत में अपने आप को फना कर दो, जैसे खुमैनी ने अपने आप को, अपनी जात को दीन इस्लाम में फना कर दिया है। सलाम उन पर जिन्होंने अपनी शख्सियत को, अपने वजूद को औलियाए खुदा में फना कर दिया। जब फना की मंजिल पे पहुंचे
तो फिर खून देना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। आप देखें आज के दौर के वो आशिकाने खुदा जिस मंजिल में बड़े बड़े आगे जाते हुए डरते हैं, वो बेखौफ होकर उस रास्ते पे चलते हैं, वो अंगारों पे चलते हैं, वो कूद पड़ते हैं आग के अंदर बेखौफ होकर, इसलिए कि ये इश्क है जो इंसान को बेखौफ बनाता है। बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम। अभी आखिरी एक वाकया बयान करूंगा और इसी पे आपकी जहमतों को तमाम करूंगा। सलवात पढ़ें बुलंद आवाज से मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। ये वाकया आयतुल्ला शहीद मुर्तजा मुतहरी रिजवानुल्ला अलैह ने अपनी किताब के अंदर बयान किया है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के पास एक वफद आया और उस वफद ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे कबीले में कुछ लोग मुसलमान हुए हैं, आप कुछ असहाब हमें दे दें जो मुबल्लिग हों, जो हमारे पास दीन का पैगाम पहुंचाएं। पैगंबर इस्लाम ने अपने 6 असहाब को जो अच्छे दीन के मुबल्लिग थे उनको भेजा तबलीग के लिए। ये कबीले हुज़ैल वाले जब इनको लेके चले तो शायद पहले से कोई मंसूबा था, जैसे ही वहां पहुंचे इन पे इन्होंने हमला कर दिया और ये चाहते थे कि इनको असीर बनाएं, इनको गुलाम बनाएं और गुलाम बना के इनको बेच दें दुश्मन के हाथ में, मक्के वालों के हाथ में, कुरैश के हाथ में। जब हमला किया इन्होंने असहाबे पैगंबर में से, दुश्मन वो इनसे कहने लगे कि हम आपको कत्ल नहीं करना चाहते, हम फकत आपको असीर बनाना चाहते हैं, कैदी बनाना चाहते हैं। हमें क्यों आप कैदी बनाएंगे? कहा, कैदी बनाने का सबब ये है कि हम चाहते हैं आपको बेचेंगे मक्के वालों के पास, हमें दौलत भी मिलेगी और हमारे उनके पास कुछ बंदे हैं, हम बदले में वो अपने असीर वापस लेंगे, हम उनके साथ सौदेबाजी करना चाहते हैं। रसूलुल्लाह के 3 असहाब कहने लगे कि हमें असीर होने की निस्बत शहादत ज्यादा पसंद है। ये 3 असहाब लड़े और शहीद हो गए। बाकी जो 3 असहाब थे उन्होंने कहा कि चलो, हमें अगर आप कत्ल नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, हम आपसे नहीं लड़ते। उनको कैदी बना के ले चले, इनको लेकर आए मक्के में, कुरैश के लोगों के सामने आके इन्होंने बेचा और अपने बंदे ले लिए। कुरैश का एक शख्स था जिसका नाम था सफवान बिन उमैया, उसने रसूलुल्लाह के सहाबी जैद को खरीदा, खरीद कर आया और मक्के में उसने ऐलान किया कि मेरा बाप जंगे बदर में मारा गया था, मोहम्मद के साथियों ने मेरे बाप को मारा था, मैं उसका बदला लूंगा, मैं मुस्तफा का एक सहाबी लाया हूं और उसको कल शहर के चौक पे कत्ल करूंगा, जिसने भी मंजर देखना हो वो देख ले। पूरे का पूरा शहर मक्का जमा हो गया। ये रसूलुल्लाह के सहाबी को असीर बना के वहां पे लाया। वहां पे जब लाया तो अबू सुफयान भी वहां मौजूद था, मक्के के सारे मुशरिक भी वहां मौजूद थे, ये रसूलुल्लाह का सहाबी वहां मौजूद था। अबू सुफयान ने आगे बढ़कर कहा जैद, जैद क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या तुम्हारा दिल ये नहीं कहता कि आज तुम्हारे बदले मोहम्मद यहां असीर होता और हम तुम्हें आजाद कर देंगे? अगर तुम इतना कह दो कि मेरे बदले मोहम्मद को गिरफ्तार कर लो, मुझे कोई बात नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है, बस मुझे इस कैद से रहाई चाहिए, मुझे कत्ल न करो, फकत एक जुमला तौहीन मुस्तफा में कह दो, हम वादा करते हैं तुम्हें आजाद कर देंगे। तारीख ने लिखा कि रसूल के इस अजीम सहाबी ने, इस आशिक़े रसूल ने कहा, देकर कहा अबू सुफयान, मैं अपने बच्चे और खानदान तो कुर्बान कर सकता हूँ, मेरा जिस्म तो टुकड़े टुकड़े हो सकता है, लेकिन मैं मोहम्मद के इश्क से दस्तबरदार नहीं हो सकता। ये इश्क रसूल जिसने इनको इतना मकाम अता किया। कहा अबू सुफयान, मैं जान तो अपनी गवा सकता हूं लेकिन मैं इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे मुस्तफा के पांव में कोई कांटा चुभ जाए। लिहाजा आइए इश्क अहले बैत की दौलत को अपने किरदार में ढालें, अपने किरदार को उस सिमत की तरफ ले जाएं कि हमारा किरदार इस तरह से बदलना शुरू हो जाए जिस तरह से मैसम तम्मार का किरदार बदला था, जिस तरह से मालिक अश्तर का किरदार बदला था। जूबू फी अलीयन कमा जाबा हुआ फिल इस्लाम, अली की जात में शख्सियत में अपने आप को फना कर दो जैसे अली ने अपने आप को इस्लाम के अंदर फना कर दिया है। गफर अल्लाहु लना वलकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।